नाम श्रेष्ठ मनुमपि शचिपुत्रा मात्रा स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मरुपुरीं मासीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डाग्रिवरमहो राधिका माधवा तं प्राप्तयश्च पथितकृपयां श्रीगुरुं तं नतो यस्मि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिः जपैतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्रादिकमादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् आनन्दलीलामविग्रहाय हेमावधिवच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते सासुखनिविदचितास्तद्बुद्धसन्नभागोपजीतुरुचिलाकृष्टसारस्तदियम् व्यतनोत् कृपयाञ्जस्तत्सदीपं पुराणं तमखलब्रिजिङ्गनं वैशसोनमत यस्मि भवे भवे यथा भक्तिपादस्तव जायते तथा कुरुषदेवेशनाथसनजत प्रभो नाम सङ्कीर्तनमजिष्य सर्वपापप्रणाशनां प्रणामं दुःखशमनस्तु तं नमामि हरिपरम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नास्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नाश्चकी श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद 19 अध्याय श्लोक नंबर 25 तत्र निर्मुक्तं समस्त संगं आत्मानुभूत्य विदूतं श्रीलिंगं परे अमले ब्राह्मणे वासुदेवे लेभे गतिम् भागवतीं प्रतीतं सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुतत्रिङ्गं परे अमले ब्रह्म निवास देवे लेभे गतिं भागवतिं प्रतीता तत्र निर्मुक्ता समस्त संगा आत्मानुभूत्या विद्युत स्त्रीलिंग परे अमले ब्रह्म निवास देवे लेभे गतिं भागवतिं प्रतीता सतत निर्मुक्ता समस्त संगा आत्मानुभूत्या विद्युत स्त्रीलिंग परे अमले ब्रह्म निवास देवे लेभे गतिं भागवतिं प्रतीता महाराज जजाति तत्र ऐसा करके निर्मुक्त तुरंत मुक्त हो गया। समस्त संग सारा कलमस आत्मा अनुभूत्या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने के मात्र से विधुत स्वच्छ त्रिलिंग प्रकृति के तीन गुण परे ब्रह्म में अमले मल रहित ब्रह्मणे परमेश्वर में वासुदेवे भगवान वासुदेव परम सत्व में लेभे प्राप्त किया गोतिम लक्ष्य भागवतीम भगवान के पार्षद रूप में प्रतीत सुप्रसिद्ध अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। क्योंकि राजा जजाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमल में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था, अतएव प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो गई। आपने आत्म साक्षात्कार के कारण वो अपने मन को पर ब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके और इस तरह अंततः उन्हें भगवान का पार्षद का पद प्राप्त हुआ। तात्पर्य विद्युत का अर्थ स्वच्छ। इस जगत में प्रत्येक प्राणी कलमश ग्रस्त है कारणं गुणसंगस्य। क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं, इस जगत में हम सतगुण या रजोगुण या तमोगुण से कलुषित होते हैं। यदि कोई सतगुण के कारण यज्ञ ब्राह्मण बन भी जाए तो भी वह भौतिक दृष्टि से कलात्मग्रस्त रहता है। उसे सतगुण पार करके शुद्ध सत्य पद को प्राप्त करना होता है, तभी वह विद्युत स्त्रीलिंग होता है और तीनों गुणों से उत्पन्न कलमश से स्वच्छ बनता है। वह कृष्ण की कृपा से ही संभव है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीणतान सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तानी विधुन होती श्रीताम। भगवान श्री कृष्ण जो कि हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप है और सत्य भक्त का उपकार करने वाले हैं, उस भक्त के हृदय की भौतिक भोग की इच्छा को विमल बनाते हैं जो उनको संदेश को सुनने के लिए इच्छुक है। जो ठीक से सुनते हैं और उत्तीर्ण होने पर स्वयं वैभवशाली होते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत या भगवद गीता से कृष्ण के शब्दों को सुनकर पूर्णतया कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करता है, उसके हृदय से निश्चित रूप से सारा मल स्वच्छ हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से हृदय का सारा मल स्वच्छ हो जाता है। जो ही मनुष्य भौतिक कलम से मल से मुक्त हो जाता है, जैसे कि महाराज जजाति थे, तो उसे भगवान के पार्षद का मूल प्रद प्राप्त हो जाता है, वह स्वरूप सिद्धि कहलाते हैं। जजाति महाराज गृहस्थ रह करके स्वरूप सिद्ध भक्त बन गया, हम लोग भी बन जाएंगे। अभी गृहस्थ है, हम लोग भी तो गृहस्थ ही है ना। जजाति महाराज ने क्या किया, तुरंत छोड़ दिया और हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, इतना अंतर है हम दोनों में। रगड़ते रह जाएंगे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। लगा भक्ति कर रहा हूं ना, मरने के बाद भगवत धाम तो जरूर जाएंगे, कि भक्ति नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं ना। हमारा सांत्वना, मंदिर जा रहा हूं, मंगल आरती कर रहा हूं, गुरु पूजा कर रहा हूं, भागवत सुन रहा हूं, प्रसाद सेवा कर रहा हूं, घर में ड्यूटी रखे हैं, पूजा अर्चन कर रहा हूं, हम क्यों नहीं जाएगा। लेकिन हम जाएगा कि नहीं जाएगा इसका विचार शास्त्र करेगा, हम तो नहीं कर सकते हैं। शास्त्र करेगा इसका विचार, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति जानते हैं हम जा भी सकते कि नहीं जा सकते हैं, दोनों तरफ है, क्योंकि हमारा जो विचार है वो शास्त्र है। साधु दुर्लभ है, अगर साधु मिलता भी है तो खुल के बात नहीं करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे का साधु लोग मुंह में बोलता था, अभी का साधु लोग थोड़ा डरता है बोलने के लिए, क्योंकि अभी का साधु का कुछ सार्थ है, उस समय साधु का कोई सार्थ नहीं था, निस्सार्थ। इसलिए शास्त्र एकमात्र आधार है जिसे हम समझ सकते हमारा गति क्या होगा। दूसरा है जय श्री श्री गुरु गौरांग गंगारी। साधु लोग परोक्षवाद होता है, सचराचर ना करके घुमा फिरा के कहते हैं आप जानो महाराज मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं क्या होगा आप जानो, परोक्षवाद प्रिय। लेकिन यहां पर जिराजी महाराज का स्टोरी से हमें ज्ञात होता है कि अगर हम इस संसार आसक्ति को ताक करके हरिभजन करें तो हमारे लिए भी स्वरूप सिद्ध पद जो है प्राप्त तो हो जाएगा। जैसे हमारा आचार्य था भक्तिविनोद ठाकुर, ये हमारा शब्द का तात्पर्य समझना चाहिए। ये श्रीमद भागवतम में धीमही पद लगा दिया है फर्स्ट पहला श्लोक में, मतलब हम सब, हमारा शब्द का अर्थ हमारा नहीं हम सब का, ये सोचो हमारा मतलब हमारा अकेला नहीं है, हम सब का आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ भक्त थे जो नित्य सिद्ध पार्षद है। लेकिन अपना आचरण कैसे करके दिखाया, हम तो जजाति नहीं बन सकते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर भी जजाति जैसे बने नहीं, संसार में रहे। तो हमारे लिए आदर्श भक्तिविनोद ठाकुर का गृहस्थ होना चाहिए। उन्होंने घर का जो कर्तृत्व था वो भगवान में छोड़ दिया था, जो कुछ उनका पास था सब भगवत सभा में व्यय करते थे। अभी तो हम जितना भी बुक प्रिंटिंग करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे पैसा आकर दूसरा बुक दोबारा प्रिंटिंग होता है, एक महीना के अंदर कितना लाखों की तक चला जाता है। उस समय एक बुक जाने के लिए भारी पड़ता था, एक भी किताब चला जाए अभी भारी होता था। एक पैसा का सज्जन तो सुनी मार्केट में कोई नहीं लेता था। उस समय उन्होंने अपना खर्चा से इतना सारा किताब का लिखन किया और उसका प्रिंटिंग किया। उनका शर्त क्या था, नोबेल प्राइज पाने के लिए। अगर वो चाहते थे तो नोबेल प्राइज उनको मिलता था, रविंद्रनाथ ठाकुर को नहीं मिलता था। ये रविंद्रनाथ ठाकुर से पहले इन्होंने उस ग्रंथों का रचना किया जो रविंद्रनाथ ठाकुर बाद में किए हैं, लेकिन वो नोबेल प्राइज के लिए आशा लेकर के हमें प्राइज मिले और जगत में हमारा नाम हो नोबेलिस्ट, इस उद्देश्य से नहीं लिखा था उन्होंने। उनका एक ही उद्देश्य था इस ग्रंथों का अध्ययन करके सब भक्त बने, इसलिए आज सब वो ग्रंथ पढ़ के भक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार गृहस्थ अपना संपूर्ण संपत्ति भगवत सेवा में व्यय करते थे, इस प्रकार अगर गृहस्थ हम बनते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए भी सुसिद्ध पद का, क्या हम तो संसार छोड़ नहीं सकते हैं, मैं केवल संसार छोड़ के मंदिर में मठवासी हो जाएंगे और मठ में रह करके आराम से हरिभजन करेंगे, हम नहीं रह सकते। अगर बोले हम लोग आ जाते काल से मंदिर में, आप हम सबको रखोगे, तो रसोंगसार छोड़ देंगे, मंदिर आ जाएंगे, मंदिर वाला भी भारी पड़ जाएगा। क्या बोलेगा? नहीं नहीं, आप लोग घर में, घर में भजन करो, ठीक है। क्योंकि मंदिर में आने के बाद समोचित तो होना पड़ेगा। बोलेगा हम लोग उदाहरण देते हैं ना, स्विच बंद करने के बाद पंखा घूमते रहते हैं, हमारे जो विषय आसक्ति है वो अभी घूम रहा है, स्विच बंद है, कोई भरोसा है दोबारा स्विच चालू ना हो जाए? जो आजकल ऐसा स्विच निकला चालू हो जाता है, हाथ में चालू मारो तो चालू होता है, हाथ में ताली मारो तो बंद हो जाता है। ऐसा स्विच में निकल चुका है तो वो स्विच हमारे में फिट हो गया होगा, तो हम अंदर आके चलो भाई स्विच घूम रहा है, कोई चालू नहीं कर रहा, बाई चांस किसी किसी का देख करके स्विच चालू हो गया तो। इसलिए महापुरुष कहते हैं यथाविज्ञ विषय भूज अनासक्त हो गया, यथाविज्ञ जितना जरूरी है उतना विषय भोग करो, अभी अनासक्त होकर के आसक्ति रहित संबंध सहित विषयी समूह सकली माधव। आसक्ति रहित, आसक्त को ताक करके, पत्नी है कोई बात नहीं है ना, साथ में वृंदावन लेके क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे, वो गलत तो नहीं है। कोई अगर कहे अरे पत्नी को साथ में वृंदावन जा रहा है, देखना कितना, ये भी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा है, वो मूर्ख है, वो जानते नहीं है, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य धर्म जागरण करना तो स्वामी स्त्री मिल करके, अकेला नहीं। लोग कहेगा अरे पत्नी का वृंदावन है, वो भी पत्नी को साथ में लेके आ गया, तो जानते नहीं है, आसक्ति के साथ लाया कि कर्तव्य समझ करके लाया। तो बहिर्दृष्टि है बहिर्विषय व्यक्ति बहिर्चिंता करते हैं, अंतर्दृष्टि से भक्त अंतर चिंता करते हैं। उपदेश देने में सब माहिर होता है, उपदेश पालन करने के लिए तकलीफ होता है, भक्तों ठाकुर भजन लिखा है लैया वैष्णव बेश आने करी उपदेश ए बड़ो मायार रंग। आप लोग देखो कोई अगर अस्पताल में है या कोई बीमार है तो हम लोग उसको डॉक्टर से ज्यादा मेडिसिन दे देते हैं, आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो, आप वो करो, वो करो, हम डॉक्टर से बड़ा है उस पर। भारत में एक बीमारी है, उपदेश देने में सब माहिर है, सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, समझा सकते हैं आपको लेकिन खुद समझ नहीं सकते हैं। जजाजी महाराज उपदेश दिया, पत्नी को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद खुद फॉलो कर लिया, चलो भाई जयराम जी, इसलिए जजाजी महाराज का स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुआ। इसलिए हम उपदेश ना देकर के अगर हम फॉलो करें, पालन करें शास्त्र आज्ञा, भाई शास्त्र में ऐसा कहा गया है हमें ये सब करना है, तो क्या होगा? जो दिन गृह थे भजन देखी गृह थे गोलोक भाई, भक्तिवन ठाकुर इसलिए लिखा था ये कोली हो तो जीव वैराग्य धर्म निभा नहीं पाएगा, इसलिए उसको वैराग्य धर्म रक्षा करने के लिए घर में रह करके हरि भजन करे, क्रमिक मुक्ति तो होगा। धीरे 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 जब हरिनाम करेगा, हरिनाम का प्रभाव इतना है जो आपको जो विषय आसक्ति है ना वो धीरे धीरे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन संसार में सब कोई है ऐसा नहीं है, पत्नी है, पुत्र है, उसका पुत्र पोता सब है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसमें वो आसक्त तो नहीं रहेगा। ये निष्ठापूर्वक हरिनाम करने का महत्व है, और अगर संसारी व्यक्ति निष्ठापूर्वक हरिनाम कर रहे हैं संसार कैसे जा रहे उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और कोई हरिनाम नहीं कर रहा है बहुत पैसा लेकिन उसका संसार जाने बहुत दुभर हो जाता है। आज जजाजी महाराज ससागरा पृथ्वी के राजा थे, या पोतनी को उपदेश दे करके संसार ताक कर दिया। लेकिन आजकल बड़ा बड़ा धनी व्यक्ति बहुत सारे हैं, वो अपना संसार को ताक कर पाएगा? 60, 70, 80, 90 तक भी बिजनेस का पीछे भागते रहेंगे, भाई हमारा पैसा कैसे वृद्धि हो। ए स्वरूप सिद्ध, स्वरूप अर्थ निज, स निज, स शब्द का दूसरा अर्थ है वैकुंठ लोक, क्योंकि सर्वलोक बोल के एक शब्द है श्रीमद भागवत दशम स्कंध में, जहां पर अकुर ने डुबकी लगाया था और वहां उनको सर्वलोक को दर्शन कराया था, और गोपी लोग भी वहां पर डुबकी लगा के सर्वलोक को दर्शन किया था। स शब्द का कितना अर्थ हो गया, स शब्द का अर्थ हुआ निजो, स शब्द का अर्थ हुआ वैकुंठ, स शब्द का अर्थ हुआ गोलोक। ये स्वरूप निज स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इन्होंने भगवान का सेवा दास भगवान से किया था, ये इनका गति वैकुंठ हो गया, इसे कहते हैं निर्मुक्त समस्त संग। संग कितना प्रकार का है, छह प्रकार है ना, क्या क्या है, ददाति प्रतिगिज्ञाति गुज्जमति भूंगते भोजव सड़विज प्रतिलक्षण, ये छह प्रकार का संग है। किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना, किसी को कुछ कहना, कुछ कहना नहीं भक्ति कहना, कुछ कहना संग नहीं होता है, उससे कुछ सुनना, उसका घर में भोजन करना, उनको घर में भोजन कराने के बुलाना अपना घर में, ये अगर किसी अभक्त के साथ किया जाता है तो संगात्मक कामिनीसु जातु ही तो नरक मिल जाए, और ये अगर किसी भक्तों का साथ किया जाता है तो भक्ति वृद्धि होता है। तो हमारे लिए संग बहुत फलदायी है, इसलिए हमें सोच समझ करके चलना पड़ता है, अगर सोच समझ करके ना चले तो गड़बड़ हो जाता है। भक्ति रसम सिंधु में भक्ति का दोष बारे में बताया गया, बज्ञारंभ परित्याग, बज्ञारंभ मतलब क्या है, ज्यादा आडंबर नहीं करना चाहिए, अगर हम गृहस्थ होकर ज्यादा आडंबर करेंगे लोगों को दिखाएंगे, भाई देखो हमने इतना लोग आया, इतना लोग को ये कर रहे हैं, इतना साधु का बुलाया खिलाया, ये किया वो किया हो गया, तो क्या होगा, प्रतिष्ठा, क्योंकि साधु सेवा प्रतिष्ठामूलक नहीं होना चाहिए, साधु सेवा प्रीतिमूलक होना चाहिए। अगर प्रीतिमूलक साधु सेवा करते हैं तो साधु सेवा होता है, अगर प्रतिष्ठा से आशा लेकर साधु सेवा करते हैं, भाई वो चार को बुलाओ मैं छह को बुलाऊं, वो छह बुला तो मैं दस बुलाऊंगा, तो वहां पर जड़ी और विष्ठा लाभ होता है। तो ये महाप्रभु का जो गृहस्थ भक्त लोग थे, वो लोग अपना जीवन यापन जैसे यापन किया है, वर्तमान में जितना सारे गृहस्थ भक्त है उसी प्रकार जीवन यापन करना चाहिए। और महाप्रभु का समय में तागी भक्त लोग जिस प्रकार जीवन यापन किए थे, वर्तमान समय में तागी भक्त लोग को उस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, तभी तागी और गृहस्थ दोनों अपना स्वरूप सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम सोचते रहेंगे कभी ना कभी पाएंगे, तो कभी ना कभी बहुत देर हो जाएगा, कभी ना कभी तो होंगे ना। हाँ ये बात सही है, जो एक बार भक्ति में लगते हैं वो कभी ना कभी तो भगवत धाम जाएगा, लेकिन समय को देखना पड़ेगा कि क्या भरोसा किस जन्म में क्या जाए। इसके लिए ये जजाति महाराज ने उपदेश दिया, उपदेश को सुनाने के बाद तुरंत अपना वहां से निकल गया। इसी कहते निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत क्या, आत्म अनुभूति किया। हम सब नहीं जानते हैं क्या भगवान कृष्ण भगवान है, यहाँ पर जितना सारे व्यक्ति वो सबको जानते हैं, कृष्ण भगवान है, जगन्नाथ भगवान है, गौर सुंदर भगवान है, सब जानता है। हरिनाम करना सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सबको जानता है। लेकिन विधु जो तिलिंग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो आसक्ति है ना, वो आसक्ति छोड़ने का प्रयास सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। भक्तिमोहन ठाकुर का कथा था एक पत्रिका में, उसमें लिखते हैं आज का दिन कर लू काल हम नहीं करूंगा। इस प्रकार जो मोहाव है ये हृदय दुर्बल्य में आता है। तो आज का दिन निकल जाए, काल से इसको हम नहीं करेंगे, जब काल आता है ना फिर इसको कर लेते हैं, काल नहीं करेंगे। भक्ति प्रतिकूल जितना सारे वस्तु है उसको उसी समय त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हम ताक सकते हैं, नहीं तो आज का दिन रखेंगे काल करेंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो माया इतना बलवान है जो हमें छोड़ने ही नहीं देगा। तो ये भक्ति का जो स्वरूप शुद्धि है, परे अमले ब्रह्मणि वासुदेवे, भगवान वासुदेव में अपना चित्त को स्थिर करके लेभे गति भागवती प्रतीत, अपना भागवती गति उन्होंने प्राप्त कर लिया। खनि इतना दिन तक विषय भोग करने के बाद कितना समय लगा, ते महत सेवा तं विमुक्त, महत सेवा विमुक्त दार आह, महत का सेवा मुक्त होने का दार स्वरूप है। तमो दारो जोशी संगी संगणनाम, नरक का दार क्या है, स्त्री संग और स्त्री संगी का संग करना, इसका दार है। तो सब गृहस्थ भक्त हमारे, हम लोग तो स्त्री संग है, सब तो स्त्री संग, हम लोग का संग करके सब नरक का दार हो जाएगा, विचार करो। स्त्री संग सब गृहस्थ सब स्त्री संग ही होता है, इनका अगर हम संग करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा, तमोदारो जोशी संगी संगणना। स्त्री संग किसे कहते हैं, स्त्री शब्द का अर्थ क्या है, एक आकार है। अगर हम स्त्री और पुरुष विचार करें तो दोनों का आकार देख के विचार करना पड़ता है, भाई इसका थोड़ा आकार अलग है, इसका थोड़ा आकार है, ऐसा देखो तो हम स्त्री बोलेंगे, ऐसा देखेंगे तो हम पुरुष बोलेंगे, यही है ना। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है स्त्री शब्द का अर्थ, शास्त्र स्त्री शब्द का अर्थ करता है भोग करने का वस्तु। जितना सारे जगत में भोग करने का वस्तु है वो सब स्त्री है, इसमें ब्रह्मचर्य भी माइनस नहीं हुआ, संन्यास भी माइनस नहीं हुआ, सब क्लास में आ गया। क्योंकि हम किसी चीज को भोगने का इच्छा है तो हम पुरुष बन गया, आज जिसको हम भोगेंगे वो स्त्री बन गया, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी क्यों ना हो। कि जब हमारा भोगने का बुद्धि होता है, उस भोगने का बुद्धि जो भी होता है तब हम पुरुष बन जाते हैं। आज जिस वस्तु को हम भोगना चाहते हैं वो स्त्री बन जाते हैं, ये तमोदार है। ऐसा नहीं है शादी किया पत्नी है तो पत्नी नरक का दार हो गया, तो आज को ये पूरा संसार ही कोई पत्नी स्वीकार नहीं करता था, आचार्य लोग भी पत्नी स्वीकार नहीं करता था। स्त्री शब्द का अर्थ क्या हुआ, जिसको हम भोग करने जाते हैं वो स्त्री है। चाहे अर्थ भोग करो, चाहे खाना भोग करो, चाहे जो भी कुछ वस्तु, भोग का इच्छा मतलब स्त्री हो गया। व्यवहारिक जगत में स्त्री शब्द का अर्थ अलग है, आध्यात्मिक जगत में स्त्री शब्द का अर्थ अलग है। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, अगर हमारे में भोग करने का प्रवृत्ति है, जिसके भी हम त्यागी व्यक्ति हूं बहिर्दृष्टि में, तो मैं पुरुष हूं और हमारा संग भी जो करेगा वो भरक जाएगा, सिद्धांत तो खड़ा हुआ। व्यवहारिक दृष्टि से एक दूसरा एक सिद्धांत, व्यवहारिक दृष्टि से जो व्यवहारिक जगत में हम देख रहे हैं स्त्री पुरुष संपर्क हो, इस विचार के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा जब हमें इस प्रकार संगति से ना फांसे। एक विचार किया। तीसरा विचार रूप गोस्वामी क्या उपदेश में तो का चौथा श्लोक कहता है, और जगाते पति के नाते इस विचार का दृष्टिकोण रख करके हमें संग करना चाहिए। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, हम भी भोक्ति सिद्धि कर सकते हैं। शास्त्र उदाहरण देते हैं, कमल का उदाहरण देते हैं, तालाब में कितने वस्तु होता है, अनलिमिटेड कीड़ा मकोड़ा मछली जलचर प्राणी ऐसा ऐसा बहुत कुछ रहता है। ये कमल का जो कलिका होता है पानी से सीधा ऊपर बाहर निकलता है और बाहर आके वो खुलता है। उस प्रकार हमें संसार में बहुत सारे व्यक्ति का दर्शन होगा, संग होगा, लेकिन हमें कैसा रहना पड़ेगा, कमल का कलिका जैसे हमें जब बाहर निकलेगा मतलब जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तो क्या पूरा ब्रह्मांड खुशबू फैल जाएगा। प्रभु बाद ब्रह्मांड खुशबू फैल गया, कमल खुलने के बाद ब्रह्मांड सब जा रहे कमल खुला है। तो शुद्ध भक्त जब जगत में प्रकाशित हो तो कमल जैसे प्रकाशित होता है और सबको उसमें आकृष्ट हो जाता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे बदमाश हो चाहे चोर हो चाहे डाकू हो चाहे साधु हो चाहे पुलिस हो। पूर्ववाद का सबको आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पूर्ववाद संसार में तो था। इसे विचार में विषय करके अगर चले तो हमारा कल्याण होता है। तो कहते हैं महान तस्ते समचित्त प्रसन्नता, महान समचित्त होता है और महत्व होता है एक सविशेषवादी और निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी महत्व कैसे हो जाता है, सविशेषवादी जो भगवान को साकार रूप का स्वीकार करते हैं तो महान को मान रहे हैं, लेकिन निर्विशेषवादी क्यों महान होता है, अरे गुणों का संग करने से संसार से मुक्त हो जाएगा। अगर आप निर्विशेषवादी का भी संग करोगे तो भी आप भगवत धाम जाओगे, संसार से मुक्त होगे और आपको निर्विशेष गोति लाभ होगा। ये निर्विशेष ज्ञानी भक्तों जानते हैं भगवान ब्रह्म है और ब्रह्मों का कोई आकार नहीं है, वो निराकार का ध्यान करते हैं, और उसी का संग आप करोगे तो आप भी वहां पर जा सकते हो, संसार से मुक्त हो गया। अरे सभी सिद्धवादी जानते हैं भगवान साकार रूप में विराजित है, उनका संग करने से हमें भगवान का साकार रूप का संग होगा। अब यही जो व्यक्ति में जो भक्ति कमा व्यक्ति होता है, वो भक्ति कमा व्यक्ति तीन प्रकार का होता है, संग सिद्धा आरोप सिद्धा कैवल्य कामा। कैवल्य शब्द का अर्थ क्या है, प्रेम भक्ति, दूसरा अर्थ मत लगा, कोई बोलो शब्द का मोक्ष भी है, कोई बोलो शब्द का अर्थ है प्रेम भक्ति। संग सिद्धिया, संग सिद्धि का उदाहरण कैसे देंगे हम लोग, फ्रंट लाइन में जाना चाहिए, इधर घुमा फिर करना डायरेक्ट फ्रंट लाइन में सीधा सिर में डंडा मारो, एक डंडा मारेगा तो मर जाएगा, इधर उधर मार टूट जाएगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, तो सीधा सिर का बीचों बीच मारना पड़ेगा, जैसे बीचों बीच मारेंगे तो हरिबोल हो जाना चाहिए। तो संग सिद्धा भक्त का उदाहरण है, जैसे सांडे फिस्ट होता है ना, कहां जा रहा है भाई, मंदिर जा रहा हूं, क्या है मतलब मंदिर में फिस्ट है, सांडे लाभ फिस्ट होता है, प्रसाद मिलता है, सब देता है, सबको देता है, 12 बजे अगर आओगे आपको कूपन मिल जाएगा, आप कूपन लेके आपको प्रसाद मिल जाएगा। चलो हम भी चलते हैं, घर में कुकिंग नहीं करेंगे। एक भक्तों के साथ दूसरा पापी अपना कर्मी व्यक्ति आ गया, ये संग सिद्ध हो गया। सीधा उदाहरण दिया मैंने, उनका इच्छा नहीं है, लेकिन आपने भजन करने आया, आपका साधन तिलक लगा के भाई तिलक करना पड़ा, ठीक है मैं भी कर लेता हूं तिलक, वो भी तिलक कर ले, यहां कूपन लेकर प्रसाद खा के चला गया, वो थोड़ा टाइम का जो है ये संग सिद्धा है। लेकिन ये संग सिद्ध अगर हमारा संग का पार है तो भक्त बन जाएगा, तो संग सिद्ध भक्त भी उत्तम भक्त बन सकता है। ये संग सिद्ध का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आरोप सिद्धा, जत करोसी जो जो नासी जो जो होसी जिजादि जत जत तपस्वी कमते हो तत्पुरुष मदार्पण, शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहा था एहो बाज्यो आगे कहो आर, ये फालतू है, ये कोई काम का नहीं है, इसको तुमने क्यों रहे रहा है रामानंद, इसको क्यों बोला तुमने, ये फालतू है, झट कोई काम का नहीं है। गीता का वाक्य भगवान ने गीता में कह दिया, अभ्यास समर्थसी मत्कर्म परम परम भव मदर्थम की कर्माणी, मेरे लिए जो कर्म करते हो अभी तुम्हें सिद्धि प्रदान करेगा। भगवान ने भगवत गीता में कहते हैं और वही गीता का वाक्य महाप्रभु बोलते एहो वाज्य आगे कहो आर, संभालो। ये जो आरोप सिद्ध है जत करोसी, ये आरोपी है, इच्छा की जो जिसमें किसी प्रकार का कोई कामना नहीं है, कामना निर्मुक्त भक्ति कैवल्य भक्ति है, ये विचार जानते हैं। ये संग सिद्धा और आरोप सिद्धा, तो आरोपी जो भक्ति भाई पकोड़ा खाने का है, इच्छा हुआ पकोड़ा खाने का, तो क्या करेंगे, चलो भगवान को भोग लगा के खा लूं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर भी भगवान को तो याद रखा ना, इतना अच्छा है। यदि भगवान ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब हमारा खाने की इच्छा होगा वो अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान जिंदगी में स्वीकार नहीं करेगा, तो उसका हाल क्या होगा बताओ, क्या बता दूं। जगन्नाथपुरी में वो जो इनका नाम क्या है, जो ब्रह्मगिरी में अलालनाथ के जो खिला रहे थे, उनका बाप चला गया था किधर, बेटा ने खिला रहे थे अलालनाथ जी को, तो अलालनाथ जी पूरा खा लिया, तीन दिन तो ऐसा ही खाया। चौथा दिन बाप ने आके पूछा प्रसाद क्या करते, खा नहीं, मैंने कहा ठाकुर जी खाने खा जाते हैं, बोले देखता हूँ मैं, बोले आज जाके खिलाओ। आज जाकर जब खिलाने गया तो भगवान ने खा के खा पूरा खत्म कर दिया, तो उसका पिता जाकर ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, अगर आप पूरा खा लोगे तो हम क्या खाएंगे। बोला जगत का जितना सारे वस्तु सो मेरे लिए है, तुम इसमें भाग, तुम खाने की इच्छा जता है ना, तुम्हारा वंशों में कोई नहीं रहेगा। आप लोग सुनना चाह, मैं बोल दिया, अगर भगवान का भोग लगाने के लिए कोई वस्तु अगर हम पहले खाने की इच्छा करेंगे तो हमारा भी अलनाथ का आशीर्वाद लग जाएगा, ठीक है। इसलिए स्वेच्छा से भाई भगवान के लिए बनाता हूं, भगवान को भोग लगेगा, फिर तो प्रसाद रूप में हमें जो मिले वो अलग बात है, नहीं जब पहले हम खाने की इच्छा करेंगे फिर भगवान को भोग लगाएंगे तो अलानाथ जी हमें आशीर्वाद देंगे, तथा तो खाते रहो, बहुत खतरनाक है हरिभक्ति, इसलिए लाभ करना बहुत दुर्लभ हो जाता है ना, भक्ति सहज सज्ज है। जैसे किसी बच्चा को स्तन पान करना उसका मामी के लिए आसान काम है, लेकिन कभी कभी मामी का स्तन में दुग्ध नहीं रहता है तो मेडिसिन देना पड़ता है, वही हाल है। भक्ति सहज सज्ज है, मेहनत का चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें भी मेडिसिन देना पड़ता है। शास्त्र का जो वाक्य है ना, इसको हर समय स्मरण रखना चाहिए, इसको हर समय स्मरण रखेगा तो क्या होगा, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या विचार करते करते हम 24 कैरेट बन जाएंगे, और जब 24 कैरेट बन जाएंगे ना सब सही हो जाएगा। चलो इतना ही बहुत है। हरे कृष्णा। बाकी कोई नहीं करेगा, ये भक्ति के लिए सही फैक्ट है। ये बोलने जाओगे तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। ये बेहाल करने का जरूरी है, हाथ करके चला जाने का।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।